आज है 31 मार्च दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 15 लोगों की मौत।
देखिए अभी तक डेथ टोल जो हुआ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है वो 15 है। इन नाउ द डेथ टोल इज 15।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज सेमीफाइनल का मैच। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर किया फील्डिंग का फैसला। अपर असम में चाय बागान के मजदूर करेंगे 30 विधानसभा सीटों का फैसला। बीजेपी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं।
विदेशी घुसपैठिया को असम आने के लिए और मौका नहीं दिया जाएगा। कोई कैटल स्मगल नहीं होगा, आम स्मगल नहीं होगा और आतंकवादियों को यहाँ आने के लिए इजाजत नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने बॉर्डर को खोल के रखा था।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की भी खबर है। एनडीआरएफ और सेना को मलबे से लोगों को निकालने में लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने हादसा का जिम्मा राज्य की पूर्व वामपंथी सरकार पर डाला है और कहा कि फ्लाईओवर का टेंडर वामपंथी सरकार के समय दिया गया था। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की उच्चतम अदालत ने राष्ट्रपति जेकब जुमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने कहा है कि जुमा ने अपने आवास में स्विमिंग पूल और एम्फी थिएटर बनाने के लिए खर्च की गई सरकारी रकम वापस नहीं लौटाकर संविधान का उल्लंघन किया है। इसके अलावा अदालत ने जुमा को सरकारी धन लौटाने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति देश के संविधान की रक्षा करने और सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। 2014 में भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने जुमा को सरकारी पैसा लौटाने का आदेश दिया था, जिसकी जेकब जुमा ने अनदेखी की थी। भूतपूर्व युगोस्लाविया में युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र के एक ट्राइब्यूनल ने सर्बिया के अति राष्ट्रवादी वोइस्लाव शेशेल को बरी कर दिया है। उन पर 1990 के दशक के बालकन युद्ध से जुड़े अपराध और मानवता के खिलाफ जुर्म के 9 आरोप थे। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में नाकाम रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अभियोजक ने कहा कि इससे युद्ध पीड़ित लोग निराश होंगे। वोइस्लाव शेशेल ने कहा कि इस मुकदमे का यही नतीजा हो सकता था। वहीं क्रोएशिया के प्रधानमंत्री तिहोमीर ओरेस्कोविच ने शेशेल को रिहा किए जाने की आलोचना की है। हेग ट्राइब्यूनल का ये फैसला शर्मनाक है। ये हेग ट्राइब्यूनल में अभियोजकों की हार है। वुकोवर से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि उस आदमी ने कितने बुरे काम किए हैं और उसे आज कोई पछतावा भी नहीं और ना ही कभी था। उसने क्रोएशिया के झंडे जलाए थे, यूरोपीय संघ के भी झंडे जलाए थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हेग ट्राइब्यूनल ने ये फैसला सुनाया है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री तिहोमीर ओरेस्कोविच के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में सरकार के नए श्रम सुधारों का विरोध करने के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। पेरिस में एक पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया गया है। इस पुलिसकर्मी का मोबाइल वीडियो फुटेज सामने आया था, जिसमें वो एक 15 साल के प्रदर्शनकारी को मारता हुआ दिख रहा है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड गज़नव ने पुलिसकर्मी के इस वीडियो को देखकर दुख जताया है। पेरिस में हिंसा के बाद करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले बात क्रिकेट की। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड 20 में सेमीफाइनल्स में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और अभी एक विकेट के नुकसान पर पंकज जी मुंडी हिला रहे हैं। मेरे साथ लाइव स्टूडियो में है पूरी जानकारी के लिए। ये कितना रन बना लिए भारत ने?
देखिए सुशीला, बहुत ही अहम मैच है चाहिए क्योंकि सेमीफाइनल है जैसे आपको पता है, और भारत का रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड टी20 में अच्छा रहा है पिछले कुछ मैचों की बात करें तो। लेकिन अभी अभी जो खबर मिल रही है कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, 31 बॉल पर उन्होंने 43 यानी 43 रन बनाए थे, अभी अभी आउट होकर गए हैं। और इस समय भारत ने 8वां ओवर जस्ट पूरा हुआ है, एक विकेट के नुकसान पे 66 रन बनाए हैं, रन गति भी अच्छी है। लेकिन ये मैच अगर मुंबई की बात करें सुशीला, तो ये मैच काफ़ी बड़ा स्कोरिंग वाला हो सकता है क्योंकि इसकी पिच जो है रनों से भरी हुई है। और वेस्टइंडीज़ के कप्तान ने कह दिया था कि वो टॉस हारे या जीते वो चेज करेंगे, यानी बल्लेबाजी बाद में करेंगे। तो भारत को इस मैच में कम से कम 200 रन बनाने पड़ेंगे ताकि वो वेस्टइंडीज़ पर दबाव बना सके, क्योंकि वेस्टइंडीज़ की टीम आपको पता है क्रिस गेल हैं, डेरेन सैमी खुद बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं। तो वेस्टइंडीज को रोकने के लिए एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और बहुत ही हिटर्स हैं उनके पास।
जी बहुत हिटर्स हैं, और जैसे कि बीबीसी हिंदी की टीम दफ्तर में उत्साहित है, वैसे ही मैं जान रही होंगी कि श्रोता और दर्शक भी बहुत उत्साहित होंगे। और वानखेड़े स्टेडियम में ये मुंबई के ये मैच हो रहा है। बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद आपका, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे पंकज जी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है और करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना प्रत्यक्षदर्शी, इस दुर्घटना के समय एक मौजूद थे प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना था
बहुत बहुत लोग थे और मतलब रिक्शा टैक्सी सब बहुत कुछ था, सब गया।
इस प्रत्यक्षदर्शी का नाम मृदुल था। ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर उत्तरी कोलकाता में गणेश टॉकीज के पास स्थित था। इस दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा,
देखिए अभी तक डेथ टोल जो हुआ है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है वो 15 है, टिल नाउ द डेथ टोल इज 15।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही थी कि इस दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है और करीब 50 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में से कईयों की हालत गंभीर है, हम इन घायलों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और बड़िया अस्पताल में इनका बेहतरीन इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। ये थे ममता बनर्जी के शब्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना को दुखद बताया है। उनका कहना था कि उन्होंने राहत और बचाव कार्य के बारे में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से जानकारी भी ली है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का कहना था,
यह हादसा हुआ है ब्रिज गिरने के कारण, उस पर उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने मुझसे जानकारी हासिल की है कि क्या क्या हुआ है, तो पूरी जानकारी मैंने उनको अभी दी है। तो उन्होंने भी बहुत ही इस पर कष्ट व्यक्त किया है और उसकी जानकारी मैं आप सबको दे रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि और अधिक जो कुछ भी किया जा सकता हो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए, तो मैं पूरी जानकारी अभी और हासिल कर रहा हूँ और जितनी भी अधिकतम सहायता की जरूरत होगी हम लोग सहायता मुहैया कराएंगे। वैसे मैं लगातार बराबर जो अपने एनडीआरएफ के अधिकारियों के कॉन्टैक्ट में।
ये थे गृहमंत्री राजनाथ सिंह के शब्द। इधर घटनास्थल पर राहत और बचाव का कार्य कर रहे एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह ने जानकारी दी।
Five teams are working there with 268 personnel. They're equipped with all the equipment. They have the cutters.
268 लोगों के साथ पांच टीमें घटनास्थल पर राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। उनके पास कटर, एयरलिफ्टिंग बैग समेत बचाव के सभी उपकरण मौजूद हैं। वे मलबे में फंसे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम ऐसी एक जगह ढूंढ पाए हैं जहां 3 से 4 लोग फंसे हुए थे। हमने उनको पीने के पानी की बोतलें उपलब्ध कराई हैं। जल्द ही हमें उन्हें जिंदा बाहर हम निकाल लेंगे। इसके अलावा हमने एक व्यक्ति के शव को भी बाहर निकाला है। एनडीआरएफ की 3 टीमें रास्ते में हैं, जो जल्द ही पहुंचकर वहां पर जो बचाव का काम है उसमें मदद करेगी। ये थी एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह के शब्द। फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी आईवीआरसीएल के प्रवक्ता केपी राव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कंपनी को इस बात का एकदम अंदाजा नहीं है कि यह हादसा कैसे हुआ।
This total act of God, we are shocked to know that how it has instance has occurred after 70% of the work is completed.
ये भगवान की मर्जी है, हम अचंभे में है कि ये घटना कैसे हो गई जबकि निर्माण का 70% हिस्सा पूरा हो चुका था और अभी इस समय हम सदमे में हैं और इस घटना को एकदम समझ नहीं पा रहे हैं। ये थे फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी IVCRL के प्रवक्ता KP राव के शब्द। मैंने इस घटना पर पूरी जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले कोलकाता में बीबीसी संवाददाता कल्पना प्रधान से पूरी जानकारी मांगी।
ये कोलकाता की बहुत ही डॉनेस टॉकीज जो जहाँ पे नाम है, लेकिन वहाँ पे इतना बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है और ज्यादातर बिजनेस लोगों का ही वहाँ पे बिजनेस है। तो इसी जगह में जहाँ पे वो ओवरब्रिज का काम चल रहा था, बस 6 महीने पहले वो स्टार्ट हुआ था, वहाँ ही ये कोलैप्स हुआ है, पूरा ब्रिज नीचे गिर गया
जी। और वहाँ पर अभी राहत और बचाव का कार्य क्या चल रहा है?
हाँ, बहुत सारी अभी जो पूरा रास्ता बंद करके काम चल रहा है, क्योंकि जगह भी नहीं है वहाँ, जो फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी आ रहा था उनको रहने के लिए भी जगह नहीं है। फिर बड़ा जो क्रेन लाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रेन लाने के बाद ही पूरा ब्रिज का जो बड़ा है लोहे का पिलर है उठा सकेंगे। वो बड़ा क्रेन की क्रेन छोड़ के नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा क्रेन जो आएगा आने के लिए वहाँ जगह भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया। इसी का अंदर उधर जो छोटा छोटा जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी है, छोटा जो क्रेन है, वो लेके पहले वो ट्राई कर रहे थे लेकिन उसमें असफल हुए। तभी जैसे है ना, आसपास लोगों का हेल्प, फिर सेना वाहिनी का, आर्मी का लोग भी अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो अभी तक जो है पुलिस का कहना कि 18 लोगों का मौत हुआ है और 78 लोगों को रेस्क्यू किया गया है
जी। हालांकि अभी अभी जो मुख्यमंत्री हैं राज्य की, उन्होंने ये कहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है और 50 करीब घायल हैं। ये बताइए कि अभी कितने लोगों के वहाँ फंसे होने की आशंका है?
देखिए, अभी तक मैंने वहाँ जितने सारे जो लोग देखे थे, वो एक्सीडेंट देखे थे, मैं उनसे बात भी किया, तो उन्होंने कहा कि इतना अचानक हुआ है और इतना है, बहुत वो बोल रहे हैं कि बहुत सारी लोकल लोग भी है जो अंदर दब अभी भी नीचे है, वो ब्रिज के नीचे है, क्योंकि वो बहुत पानी दे रहे थे उनको, बहुत लोग पानी मांग रहे थे। इसका अंदर हुआ जब वो ब्रिज नीचे गिरा तो बस के ऊपर गिरा, तो फिर बस का जो पेट्रोल टैंक था वो बस्ट हो गया, तो फिर वो पूरा जलने की लोगों का वहाँ जल के पूरा आग में जल गए बहुत सारे लोग। तो उनका जो डेड बॉडी निकल रहा था पूरा काट पीस पीस करके, वो छोटा छोटा पीस करके निकल रहा था, काला हो गया था बॉडी, पूरा डेड बॉडी, वो भी मैंने देखा।
कल्पना, ये कहा जा रहा है कि जो बिल्डर है उनको बख्शा नहीं जाएगा, राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा है, तो इसमें एक तरह से जो इस ये निर्माणाधीन था, ये अभी फ्लाईओवर बन ही रहा था और उसका गिर जाना, उस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या जानकारी आ रही है बिल्डर्स के बारे में?
ये 164 करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट था, 2007 में ये पास हुआ था प्रपोजल साहब, फिर काम बस शुरू हुआ था 6 महीने पहले। मैं उधर जाके जैसे देखा कि ब्रिज आसपास लोगों की बस्ती के दोनों पास घर है, करीबन 1 फुट या 1.5 फुट की पास से ये ब्रिज, मैंने घर का जो बाउंड्री वॉल जो है उनमें से बस 1 फुट दूरी में ये ब्रिज, दोनों पास में बहुत ही क्लोज है, और वहाँ इतने लोग काम करते हैं और वहाँ इस तरह एक्सीडेंट होना, तो बहुत सारे लोगों का मौत की सोच रहे हैं, अभी तो बता नहीं सकते कितने हैं।
कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से करीब 15 लोगों की मौत, ये थी कोलकाता से बीबीसी संवाददाता कल्पना प्रधान।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ व मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे सेमीफाइनल्स में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए हैं। आगे भी हम आपको स्कोर बताते रहेंगे। अब बात चुनाव से संबंधित। अपर असम का इलाका चाय बागानों के लिए जाना जाता है और चाय मजदूर इन 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। यहाँ 4 अप्रैल को चुनाव होने हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी, एजीपी और पीडीएफ पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। बीबीसी संवाददाता अब अपर असम के जोरहाट पहुंच चुके हैं। मैंने सलमान रावी से चुनावी माहौल पर बात की।
देखिए, जोरहाट बिल्कुल बीच में है, ऊपरी असम के चारों तरफ काफी फैला हुआ इलाका है और ये चाय बगानों का इलाका है। वैसे एक बात तो ये जान लीजिए कि ये उस तरह के चुनाव यहाँ नहीं लड़े जाते जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता है कि रिक्शा पे गाने बज रहे हैं और रैलियां निकल रही हैं लंबी चौड़ी, बहुत खामोशी के साथ यहाँ कैंपेनिंग होती है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का असम गण परिषद और बीपीएफ के साथ, वो भी अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस भी खामोशी के साथ अपना कैंपेन अभियान जारी रखे हुए है। तरुण गोगोई जोरहाट में मौजूद थे आज, और इस इलाके में अमित शाह की भी रैलियां हुई हैं चार, जोरहट के आसपास ऊपरी असम में भी हुआ है और बराक वैली है वहां भी हुई है। जो सर्वानंद सोनोवाल हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिनका चेहरा सामने पेश किया है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार जो बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई, वो भी कैंप किए हुए थे जोरहाट में, क्योंकि उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी मझोली वो पास में ही है, बिल्कुल टापू का इलाका है वो, जहाँ वो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी गहमा गहमी रही है जोरहाट में और है लगातार, बड़े नेताओं का आना जाना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी सब यहाँ इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो बड़ी निर्णायक हैं।
यहाँ की सीटें काफी निर्णायक होंगी और जहाँ पर आप हैं अभी वो चाय बागान वहाँ पर हैं और वहाँ के मजदूर तय करेंगे कि किसे जिताना है, किस पार्टी को वोट देना है, लेकिन अगर इन मजदूरों की बात की जाए तो वहाँ दबदबा जो है कांग्रेस का माना जाता है, तो ऐसे में क्या रुख देख रहे हैं आप?
ये बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस का दबदबा इसलिए भी है क्योंकि मजदूरों के बीच में जो यूनियन काम करती है वो इंटक की एफिलिएटेड यूनियन है, और यही वजह है कि 30 में से 14 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं सिटिंग, और इसीलिए ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और जो उनके अलायंस के पार्टनर्स भी हैं उनके लिए भी, कि ये जो टी ट्राइब्स हैं, असम की जो ट्राइब्स हैं, जनजातीय लोग हैं, इनके बीच में वो किस तरह से अपनी पैठ बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका गढ़ रहा है, गढ़ माना जाता है कांग्रेस का। और ये बात भी सही है कि जो बात लेकर बीजेपी इनके बीच में जा रही है वो है कि 15 साल का जो शासन रहा है कांग्रेस का राज्य में, और उसके बाद उससे पहले केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं मजदूरों की वो वैसी की वैसी रह गई, उनकी न्यूनतम मजदूरी का जहां तक सवाल है, उनकी चिकित्सा का सवाल है, उनके बच्चों के लिए स्कूल का सवाल है, रहने के लिए घर का सवाल है, वो सारे मुद्दे उसी तरह से लंबित रहे। तो ये एक जो मौका है भारतीय जनता पार्टी इसी बात को लेकर चाय बगान के मजदूरों के बीच में जा रही है, हालांकि इतनी पावरफुल यूनियन है इन तक, उसके बावजूद वो जाकर कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में मजदूरों का रुझान वो किस तरह से उनका वोट ले पाए।
ये थे जोरहाट से सलमान रावी। असम में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया है। इस बार विधानसभा का चुनाव भाजपा सोनोवाल के नेतृत्व में ही लड़ रही है। सोनोवाल मांजुली विधानसभा की सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि AGP और BPF के साथ हुए भाजपा के अस्वाभाविक गठबंधन के नायक भी सोनोवाल ही रहे हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी ने ही सर्बानंद सोनोवाल से बात की।
आपका जो गठबंधन है बड़ा अस्वाभाविक गठबंधन है, एक तरफ AGP है, दूसरी तरफ जो है वो BPF है, तो किस तरह से दो अलग अलग पोल्स को लेकर बीच में आप कैसे इनको मैनेज करेंगे, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं?
सब कोई तो देश को मतलब सुरक्षा देने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे असम में जो विदेशी घुसपैठियों ने जितना जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया है तो उससे उनको निकालना है। निकालने के लिए हमें अपनी जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है सबको साथ लेके ही आगे जाना होगा। तो अब हमारा शक्ति बहुत बढ़ गया है और उसी हिसाब से अभी ये कांग्रेस और AUDF ये दोनों असम की धरती पर खास करके बहुत वो सदियों से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए दोनों को रुकना, दोनों को हराना लक्ष्य तय कर लिया है।
लेकिन कमाल की बात यह है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि AIUDF के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है।
कांग्रेस और AIUDF का रिश्ता सदियों से है।
नहीं, लेकिन आपका जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अगर BJP पावर में आती है तो वो ओज जो परफ्यूम बनाने का जो पेड़ है
सबको लीगलाइज, मोनोपोली नहीं होगा।
तो एक आदमी एक परिवार का वर्चस्व है उसके
ऊपर। नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत लोगों का सोच है। हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज करना मांगते हैं सारी विश्व व्यवस्था को ताकि सबको यहाँ से फायदा मिले। द एंटायर लाइक प्रोसीडिंग विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, जो भी होगा खुलेआम में होगा और जो भी होगा जनता।
इलीगल माइग्रेंट्स का सवाल जहाँ तक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की थी कि 2014 के 26 मई तक सब अपना सामान बांध लें, तो
अभी तो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया,
तो 14 तो पार हो गया।
नहीं नहीं, हमने काम शुरू कर दिया,
भी चली गई।
देखिए, विदेशी घुसपैठिया को रोकने के लिए जो हम लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, जो आप लोगों ने देखा है, पहली बार के लिए अगर कोई सरकार ने इंडो बांग्ला बॉर्डर को सील करने में मजबूत कदम उठाया है, वो बीजेपी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने मजबूत कदम उठाया, इसकी वजह से आप विदेशी घुसपैठिया को असम आने के लिए मौका नहीं मिलेगा।
नहीं, लेकिन लैंड स्वैप जो हुआ है उसको लेकर लोगों में
नहीं, नहीं लैंड स्वैप के सिलसिले में शुरुआत में लोगों को भ्रम पैदा किया था मीडिया ने, सेक्शन ऑफ मीडिया, बाद में लोगों को लॉजिक मालूम हो गया है, क्योंकि जो भी जमीन बांग्लादेश की तरफ गया है वो उनके पास था सदियों से, ये हमारा कब्जे में थे नहीं, तो इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा लाभ हुआ है, हमको जमीन मिला है। और सबसे बड़ा लाभ होगा कि विदेशी घुसपैठिया को असम आने के लिए और मौका नहीं दिया जाएगा, कोई कैटल स्मगल नहीं होगा, आम स्मगल नहीं होगा, और आतंकवादियों को यहाँ आने के लिए इजाज़त नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो कांग्रेस ने बॉर्डर को खोल के रखा था। दूसरी तरफ जो एनर्जी अपडेट काम में कांग्रेस ने कुछ भी उनका ये नहीं दिखाया, सिंसियरिटी नहीं दिखाया, तो इसमें हमको अपना कदम हम लोगों ने उठाया है। आपको मालूम है कि हमने जब सरकार में आए तो साथ तुरंत हम लोगों ने जो पैसा चाहिए था असम सरकार को, मैं हम लोगों ने रिलीज कर दिया। लेकिन कांग्रेस कभी भी नहीं चाहते थे कि एनर्जी बने, वो चाहते थे कि संभाव विदेशी, जैसे इलेक्टोरल रोल में उन्होंने अपने इंडल्जेंस की वजह से लाखों विदेशी घुसपैठियों का नाम डाल दिया।
सोनोवाल साहब, कांग्रेस की जड़ें काफ़ी मजबूत रही हैं क्योंकि लगातार उनका शासन रहा है, तो वैसे में उसमें पेनिट्रेट करना और वहाँ अपनी जगह बनाना कितना बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आपका उतना बड़ा तो संगठन या उतना बड़ा बेस था नहीं यहाँ पे कभी पूर्वोत्तर में।
लिखिए, हमारे जो डेमोक्रेसी में एक बार अगर जनता ने मन बना लिया, कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में जो अन्याय किया है तो इसलिए लोग नाराज हैं।
लेकिन एक लास्ट सवाल है उल्फा के बारे में, कि जो ईमेल के जरिए परेश बरुआ इंडिपेंडेंट, जो उनका उल्फा इंडिपेंडेंट है, उसने चेतावनी दी है, ये कहा है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें कि किस तरह से करेंगे, 2003 के गायब हुए जो लोग हैं उनके उसका आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं और अपनी पोजीशन साफ करने के लिए कह रहे हैं बीजेपी को।
देखिए, जनता जब हमारा साथ है, जनता जो कहेंगे ऐसे ही हम करेंगे।
बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल से बात कर रहे थे सलमान रावी। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल्स में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए हैं। और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं इंदु पांडे। आपका नाम इंदु पांडे ही है ना
जी?
अब तक तो श्रोता आपको बहुत अच्छी तरह पहचान चुके हैं इंदु जी, और अगर आपको ये गलत फहमी है कि हमारे श्रोता सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, तो इस गलत फहमी को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि ये मैं जो आज चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ, ये चिट्ठी हमारे पास आई है पाकिस्तान की मलाकंद एजेंसी से, और इनका पता है ऑटो मैदान, पोस्ट ऑफिस कंबड़, तहसील लाल किला, ज़िला दीर, लोअर दीर, यानी ये वो इलाका है पाकिस्तान का जिसे बहुत दूर दराज का इलाका कहा जा सकता है। और लिखने वाले हैं, इन्होंने अपनी एक तस्वीर भी अपनी चिट्ठी में लगा रखी है। इनका नाम है सफ़ी उल हक, और जो 10वीं जमात के तालिबे इल्म हैं यानी के छात्र हैं। ये लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी में जो ग्वांतानामो जेल के हालात बयान किए गए दुनिया जहान प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत शुक्रिया कहते हैं। कहते हैं कि अंदाज स्टाइल अच्छा था और म्यूज़िक साउंड आवाज़ अच्छा था, इस अंदाज में दुनिया जहान पेश किया करें। ये जो ख़त इन्होंने लिखा है ये उर्दू में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखा है, अपनी एक तस्वीर भी इसमें लगाई है। सफ़ी उल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम उस दूरदराज इलाके में सुनते हैं, पाकिस्तान में सुनते हैं, हमें उम्मीद तो ये है कि अब आप लगातार हमें ख़त लिखते रहेंगे, ये नशरियात सुन रहे हैं तो हमें ये भी उम्मीद है कि लगातार आप सुनेंगे और अपनी राय से हमें वाकिफ कराते रहेंगे। इंदु जी, आपको कुछ खुशी हो रही है कि नहीं?
बहुत खुशी हो रही है जी। अगली चिट्ठी हमारे पास है राजेश कुमार पांडे की, ग्राम पोस्ट लोहरा बरामदपुर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। कहते हैं कि मेरी राजेश जोशी जी आपसे विनती है कि एक बार वे अमेजन की यात्रा पर गए थे, अगर हो सके तो हम श्रोताओं से अपना अनुभव साझा करें।
बिल्कुल, देखिए वो अमेजन की जंगलों की जो यात्रा की थी उस पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उन कार्यक्रमों को सुना भी था, लेकिन वो तो कई बरस पुरानी बात हो गई है। अब कभी रिविजिट करने का अगर मौका लगा तो फिर ज़रूर आपकी इस फरमाइश पर गौर किया जाएगा।
और अगली चिट्ठी है बहुत ही खूबसूरत सी हैंडराइटिंग में, भुवनेश्वर महंत ग्राम तुलसी जांजगीर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं ये कि 18 मार्च की विवेचना सुनकर फिर से टेस्ट क्रिकेट की वही गौरवशाली सुनहरी यादें ताज़ा हो गई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुना और चिट्ठी लिखने के लिए समय निकाला।
और ये ईमेल है सुरेंद्र नाथ सिंह का नागांव आसाम से। बुधवार को मोहनलाल शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहां में सीरिया के पलमायरा शहर की विरासत को जानने का मौका मिला।
जी 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 बिल्कुल।
और कहते हैं आगे कि जानकर तकलीफ हुई कि अतिवाद के चलते चरमपंथी संगठन के द्वारा पुरानी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है।
जी मोहनलाल शर्मा ने अच्छा कार्यक्रम किया था, हमने भी सुना और उसमें बहुत अच्छी जानकारी थी। ऐसे कार्यक्रम हमारी कोशिश है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचें।
अगली चिट्ठी हमारे पास आई है आफाक अहमद साहब की, पीएचडी रिसर्चर हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं।
क्या लिखते हैं?
आदाब अर्ज़े कहते हैं कि बीबीसी हिंदी एक ऐसा मंच, एक ऐसा तिलिस्म, एक ऐसे न्यूज का कलेवर कि मन में ऐसी सारंगी बज रही
है। क्या बात है रे साहब, वाह।
आज जब मैं इस कैंपस में पिछले 10 सालों से ये कार्यक्रम आ रहा हूं, कभी ऐसा नहीं लगा कि इंटरनेट और तेज रफ्तार भरी जिंदगी में रेडियो का ये कार्यक्रम टीवी न्यूज से कदम ताल नहीं मिला पा रहा।
आफाक साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप ये कार्यक्रम सुनते हैं और आपको ये अच्छे भी लगते हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप लगातार सुनते रहिए और कभी दिल्ली आना हो तो हमसे मुलाकात भी कीजिए।
आज तो बहुत सारी तारीफों की चिट्ठियां आई हैं।
जी,
अभय कुमार निराला बगेन बक्सर बिहार से, पोस्ट कार्ड के अभाव में एक कोरा कागज पर पत्र लिखता हूँ, स्वयं लिफाफा बनाता हूँ, 6 किलोमीटर साइकिल की दूरी तय कर रेलवे स्टेशन रघुनाथपुर पोस्ट ऑफिस से 10 रुपए का टिकट चिपका कर छोड़ देता हूँ। और आपकी तारीफ
और इसके बाद भी अगर चिट्ठी शामिल नहीं होती हो तो कितनी कोफ्त होती होगी उनको, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। इसीलिए हम आपकी चिट्ठी शामिल कर रहे हैं क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे कार्यक्रम सुनने के लिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हम शामिल नहीं कर पाते हैं चिट्ठियां। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे जहन में नहीं हैं।
ये पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है नरेंद्र कुमार का, मेरठ उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि इनका भी कश्मीर जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेल है हमारे पास,
ईमेल भी आया। अच्छा
जी, आसिफ करीम ने मौला नगर सीतामढ़ी बिहार से कहते हैं कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था लेकिन इंडिया बोल का जो विषय था उसमें जो सवाल पूछे गए थे वो अच्छे नहीं थे। अगर आप ऐसा करें कि सवालों को एकत्रित कर लें और फिर विषय पर आधारित सवालों का जवाब लिया जाए तो शायद प्रोग्राम का स्तर बेहतर होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है और हम अब अगले बार जो कार्यक्रम होगा इस पर ध्यान देंगे कि किस तरह से सवाल जो पूछे जाएं वो कार्यक्रम के हिसाब से रेलेवेंट हों, हस्बे हाल हों और ताकि अच्छी बहस हो सके। मुझे लगता है आज चिट्ठियाँ बस इतनी ही। नमस्कार।
आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश जोशी और इंदु पांडे। और अब बात वर्ल्ड कप T20 की, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच सेमीफाइनल्स खेला जा रहा है और भारत के का अभी तक एक विकेट ही गिरा है। लाइव जानकारी के लिए पंकज प्रदर्शी मेरे साथ स्टूडियो में। कैसा चल रहा है भारत, अच्छा खेल रही है?
देखिए सुशीला, ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा क्योंकि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता है तब तक ये कहना कि कौन सी टीम कितना अच्छा खेलती तो अच्छा प्रदर्शन रहता। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक ही विकेट गिरा है जैसे आपने कहा, और इस समय 13वां ओवर चल रहा है। एक विकेट के नुकसान पर 102 रन बने हैं। कोहली खेल रहे हैं 19 रन पर और रहाणे 36 रन पर खेल रहे हैं। और जो शुरू में हम बताना भूल गए थे अपने श्रोताओं को कि इस मैच में युवराज सिंह नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह मनीष पांडे को शामिल किया गया है और टीम में एक चेंज भी है, यानी शिखर धवन को टीम से ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह अजिंक्य रहाणे आए हैं। और रहाणे की खासियत यह है कि मुंबई के रहने वाले हैं तो मुंबई होम ग्राउंड है जहां पे ये मैच हो रहा है, तो इसलिए रोहित शर्मा को मौका दिया गया था और रहाणे को, कि दोनों का ये होम ग्राउंड है। टॉस की बात करें तो भारत के लिए भी अच्छा रहता अगर वो टॉस जीतती, और टॉस जीतने के बाद जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि वो भी अगर टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी करते क्योंकि इस महत्वपूर्ण मैच में शायद रन चेज करना टीम कोई भी टीम चाहेगी। और डेरेन सैमी ने वही किया, वेस्ट इंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है। पिच की बात करें तो रन से भरी हुई है और इस पिच पर देखिए हम लोग कोई बहुत बड़े जानकार नहीं है लेकिन 180 और 200 के बीच अगर भारत की टीम स्कोर खड़ा करती है तभी माना जाएगा कि हाँ चुनौती हो सकती
क्योंकि है। वेस्टइंडीज भी बहुत मजबूत टीम है।
बिल्कुल मजबूत टीम है और जैसा कि क्रिस गेल ने जो खेला था इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद होगा, तो क्रिस गेल के अलावा भी उनकी टीम में कई अच्छे बल्लेबाज हैं और बिग हिटर्स हैं, और टी ट्वेंटी मैच जो है 20 ओवरों का मैच होता है, और इसमें जो भी टीम अच्छी बल्लेबाजी करती है कम समय में वो अच्छा प्रदर्शन करती है। तो देखना ये होगा कि इस सेमीफाइनल में भारत की टीम कैसा खेलती है, आगे क्या करती है।
और 106 रन बना चुकी है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए पंकज प्रदर्शी आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 60 लोग घायल हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर। एनडीआरएफ और सेना मलबे से लोगों को निकालने में लगी। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों को नहीं बख्शेंगे। भूतपूर्व युगोस्लाविया में युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र के एक ट्राइब्यूनल ने सर्बिया के अति राष्ट्रवादी नेता वोइस्लाव शेशेल को बरी कर दिया है। क्रोएशिया और बोस्निया ने फैसले की कड़ी निंदा की। फ्रांस में सरकार के नए श्रम सुधारों का विरोध करने के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें। पेरिस में एक पुलिसकर्मी और 10 लोग हिरासत में लिए गए। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।